भाइयों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। गीता के चैप्टर 18 की हम चर्चा कर रहे हैं। आज 33 श्लोक है। मेरे साथ मिलकर बोलिए, धृत्या यया धारयते धया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेना व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का जो कैरेक्टर है वो अपने अंदर और बाहर के एटीट्यूड के हिसाब से हम जो कुछ भी करते हैं या जो इनपुट लेते हैं या आउटपुट देते हैं वो सब उनको हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। दुनिया के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या हम कैसे एक्ट करते हैं। एक्ट और रिएक्ट दोनों में किसी भी तरह से हर पर्सनालिटी को अगर हम डिफाइन करें तो उनको तीन तरह से क्लासिफाई किया गया। आज जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है जो फॉर्मनेस है। जब कोई व्यक्ति लाइफ में कोई चीज गोल सेट करता है, छोटा गोल हो बहुत बड़ा गोल हो, लाइफ में क्या अचीव करना है या हमें कल क्या मुझे करना है, मुझे एक महीने तक क्या करना है, और वो इंडिविजुअल गोल हो, फैमिली का हो, सोशियली हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, जब हम कोई चीज डिटरमाइंड करते हैं कि मुझे ये करना है, उसके बाद हम उसको कैसे डील करते हैं वो भी, उसको अगर हम क्लासिफाई करें उसमें भी तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे, या कोई एक व्यक्ति अलग अलग समय पर तीन तरह के एटीट्यूड दिखाता है उसे हम कहते हैं धृति, परसेवरेंस। By which one maintains the unswerving activities of mind, और उसमें mind भी, life force जिसको आप प्राण कहते हैं, और जो senses जो इंद्रियां हैं, mind और senses ये हमारे ज्यादातर control से बाहर हो जाते हैं, पर हमें ये ज्यादातर हमें पता भी होता है कि senses कैसे हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। मैं चाहता नहीं हूं ये करूं पर मेरे से हो जाता है। मैं जानता हूं मुझे ये नहीं खाना तब भी खा लेता हूं, मुझे पता है मुझे वहां नहीं करना तब भी वो कर लेता हूं, मुझे पता है ये करना है तब भी नहीं करता हूं, क्योंकि सेंसेस कहीं ना कहीं हमें मजबूर करते हैं। इसी तरह माइंड भी है। पर एक चीज जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आता वो है हमारे प्राण, जो ब्रीदिंग मूवमेंट है, जो लाइफ फोर्स है। और सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादातर लोग अपने सांसों पर भी कंट्रोल नहीं करते। अब आज धीरे धीरे आजकल लोग बड़े समझदार होने लगे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, इसीलिए धीरे धीरे लोगों के योग के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और जब आप योग के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है तो उनको पता लगता है लाइफ सिर्फ पैसा कमाना और उसको खर्च करने में नहीं है, या फैमिली या सोशल गैदरिंग में नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है अगर सुखी जीना है, लंबा जीना है। तो वो जो तीन तरह की फॉर्मनेस है, डिटर्मिनेशन है, उनको समझने से पहले धृति को जरा समझें। वो मन की जो स्ट्रेंथ है, जो इनर स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रांगनेस है, जो कितने भी आपकी गोल में, अब गोल छोटा गोल भी ले सकते हैं ना कि भाई मुझे आज से ये नहीं खाना है, मुझे कम खाना है या ज्यादा खाना है, मुझे आज से फ्रूट्स या सैलड ज्यादा खाना है या सब्जी कम खाना है, मुझे आज से एक्सरसाइज ज्यादा करना है, मुझे आज से प्राणायाम बढ़ाना है, या मुझे आज से ऐसे लोगों से बात गॉसिप नहीं करना है। ये भी तो बड़ी बात है ना, मजा आता है बहुत। अच्छा ये लेडीज बड़े बदनाम है वैसे, पर हमने देखा ऐसा कुछ नहीं है, वो सब गॉसिप करते मजे लेते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी दिन लगा कि भाई ये बुरी बात है, तो आपने सोचा नहीं करना। अब ये छोटे छोटे गोल्स हैं, और इसी तरह लाइफ के आपके बड़े बड़े गोल्स होते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मैं जॉब करता हूं मुझे यहां तक पहुंचना है, मेरे गोल ऑफ लाइफ ये होना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं तो आप अगले जन्म तक भी सोचते हैं, पर क्या है कि कुछ कभी कभी हम ओवर स्मार्ट होते हैं तो अगले जन्म के लिए पैसा बचाते हैं। अब इतना कमाते भाई क्या करोगे। वो पहले राजा लोग क्या करते थे, जैसे आप इजिप्ट में अरबियन कंट्रीज में आप देखते हैं, वो अगले जन्म के लिए भी जो मरते थे उनकी कौन सी सुंदर रानियां हैं उनको पहले से चूज कर लिया जाता था, और सामान क्या क्या खाना पीना सब वो मरने के साथ जब उनको दफनाते थे वो सुंदर स्त्रियों की भी जिंदा दफनानी पड़ती थी, क्योंकि मरने के बाद उनके साथ उनको रहना होगा। अब ये ओवर स्मार्टनेस है, कोई भी चीज ओवर हो तो ज्यादा होता है ना। तो हम लोग भी कभी कभी लाइफ में सिवाय पैसा कमाने के, उसको खर्च करने के बाद और कुछ सोच नहीं पाते। सारे नहीं, कुछ लोग सोचते मरने के बाद भी ये काम आएगा, पर जो रियल स्मार्ट होते हैं वो अपने अगले जन्म की भी तैयारी कर लेते हैं कि वह ऐसा ना हो कि अगले जन्म में मैं भी कोई बकरा बनूं और मुझे कोई हलाल करता हुआ और मैं करता रहूं और मरूं ही नहीं। कितना दर्दनाक जीवन होता है। तो उसकी तैयारी कर लेनी कि भाई मुझे कोई ऐसा जन्म ना मिले, मैं कोई गाय का जन्म ना मिले कि मुझे कोई भी मारता रहे, पीटता रहे, दूध नोचता रहे और मेरे नाक में रस्सी बांध के जिंदगी भर बांधता रहे। ये तैयारी होती है अगले जन्म की। तो सबका गोल अलग अलग है, वो डिपेंड करता है कि मैं अपने बारे में कितना अवेयरनेस रखता हूं, कितना स्मार्ट हूं, कितना समझता हूं, अलग बात है कितना हूं, और मेरा क्या गोल होते हैं, कितना लंबा गोल होते हैं, छोटे छोटे गोल हैं। अब बात आती है गोल फिक्स होने के बाद उस पर कितने देर तक हम टिकते हैं। वो जो टिकना है, गोल फिक्स करना अपने आप में एक बड़ी बड़ी स्ट्रगल है, पर अगर गोल आपने फिक्स कर भी दिया कितने लोग उसमें स्टैंड करते हैं। ये जो स्टैंड करना कि कैसी भी हालत हो मुझे ये करना ही करना है, या कैसी भी हालत हो मुझे ये नहीं करना, वो जो डिटर्मिनेशन किसी भी हालत में मेंटली बना रहे उसे कहते हैं हम धैर्य या धृति। धैर्य पेशेंस को भी कहते हैं, पेशेंस भी उसी, एक्चुअली जो पेशेंस है, जो धीरज है, वो भी उसी डिटर्मिनेशन का एक दूसरा छोटा साइड है कि आपको फल नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप अब भी नहीं छोड़ रहे हो, पकड़ के बैठे हो। सो इट इज व्हाट कीप्स आवर विजन फोकस्ड टुवर्ड द गोल कि मुझे अचीव करना है कितने भी मुसीबत आए। भारत में एक लड़की, गांव की लड़की है, इसका नाम मैं बोल रहा हूं, तो किसी तरह वो ट्रेन के पटरी पर, उस पर ट्रेन चढ़ गई तो उसके दोनों पैर कट गए और वो रेल पर गिरी रही दोनों के बीच में, और 4-5 घंटे तक उसके ऊपर कितने दर्जनों ट्रेन पास करके चले गए, वो बेहोश पड़ी रही है। कितने घंटों के बाद लोगों को पता चला, उठा के मेडिकल ले गए, हफ्ते भर के बाद उसको होश आया, पता चला दोनों पैर नहीं है। बहुत रोई, बहुत दिनों तक रोई। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आप पैर तो रही नहीं, अब आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, पर आप धीरज रखो। उसने बोला धीरज रखने की बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगी कि मेरे पैर के बिना भी मैं जी सकती हूं, अब तो मैं जीऊंगी। अब किसी भी कारण उसके अंदर मोटिवेशन आया, और मोटिवेशन आने के बाद इतना बड़ा गोल उसने रखा कि मैं तो हिमालय के एवरेस्ट चढ़ूंगी इसी दोनों पैरों के बिना। देवियों सज्जनों, वो हरियाणा में जो बच्चेंद्री पाल जी हैं उनसे मिली, मुझे लड़की की नाम याद नहीं आ रही, शायद आप गूगल में सर्च करके ढूंढ सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लिया, गाइडेंस लिया, ट्रेनिंग ली, और दुनिया के शायद पहली लड़की है जो बिना पैरों में भी वो एवरेस्ट चढ़ गई। ये जो डिटर्मिनेशन है, इवन लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हम तो छोटी छोटी चीजों में कंप्रोमाइज कर बैठते हैं, छोटे छोटे गोल पालते हैं, जनवरी फर्स्ट के दिन, मार्च आते आते, स्प्रिंग आते आते एक भी नहीं गोल बचता सब खत्म हो जाते हैं। ये जो विल पावर है, ये है धृति, और उस धृति को यहां गीता में श्री कृष्ण तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहली, जो अपने मन को, इंद्रियों को और प्राणों को, इन तीनों को कंट्रोल करता है योग के द्वारा। योग का अर्थ ही है मन चित्त, मन बुद्धि आपकी सेंसेस, इनको जो रेगुलेट कर सके, इनको अपने कंट्रोल में ला सके। प्रॉब्लम जनरली आम लोगों में होता है कि हम माइंड के स्लेव बनते हैं, जबकि जो नेचुरली भगवान ने माइंड या सेंसेस को बनाया कि इंसान इससे काम ले, यह हाथ आपका है, आप इसको यूज करोगे, ये जीव आपकी है, आप इसको यूज करोगे, क्या चखाना है नहीं चखाना वो आप डिसाइड करोगे, नहीं कि जीव डिसाइड करेगा। पर जनरली धीरे 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 अगर हमारी अवेयरनेस नहीं है तो फिर हम जीव के गुलाम बन जाते हैं, और घर में दो चार दिन कंट्रोल किए, हमने दो महीने से डाइटिंग पर रहे, जी नहीं ये नहीं खाना वो नहीं करना, और पार्टी में गए देखा क्या करें, इतने तरह की मिठाई रखने की क्या जरूरत थी, पता होना चाहिए। कुछ डाइटिंग वाले भी लोग आते हैं, कितने मुश्किल से करते हैं, और आइसक्रीम रखा भी है, दर्जनों तरह के रखा है, इतने से चलो कोई बात नहीं कल से कर लेंगे, आज तो खा ही लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला मिली, वो पार्टी में थी, बोले आज वैसे तो आज व्रत है, फास्टिंग था, पर खाना ऐसे बने रखे तो लगता मैं कल ही फास्टिंग कर लूंगी, आज तो छोड़ी दर। तो आपने कुछ डिसाइड किया, क्या सोच के किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने सोचा कि मुझे आज फास्ट करना है, या एक हफ्ते तक ये नहीं खाना, ये नहीं करना, पर आप तब तक कंट्रोल करते हैं अगर वो सामने ना हो, और सामने अगर बहुत ड्यूरेटिव हो, कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो, तो फिर हम पिघल जाते हैं। वैसे जो साधु सन्यासी योगियों को ट्रेनिंग दी जाती है सेंस कंट्रोल करने की, अपने आप को परखने के लिए, उनको कहा जाता है अगर आपको लगे कि आपकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम करो खाने पर कंट्रोल करो। खाने पर कंट्रोल कैसे, ऐसे जगह जाओ या ऐसे जगह रहो, ऐसे खानों के बीच में रहो जहां बढ़िया बढ़िया खाना बनता है और जो आपको पसंद हो, आपको पसंद हो, वैसे ही खानों को देख, जहां पार्टी में हो, घर में हो, ऐसे ही खाना बनाया जाए, और आप इनको देखो, मन भी करे, और अपने मन को डांटो जैसे आप बच्चों को कंट्रोल करते हो, बिल्कुल अलाउ नहीं करना हाथ को कि वो हाथ छू ले खाने के लिए। अगर आप खाने पर कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए कि आप आधा जंग जीत गए। जो जीव पर कंट्रोल कर लिया वो आधा जंग जीत गया, ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता है ब्रह्मचर्य पालन के लिए। फिर ऐसा इसका मतलब है कि आधा जंग जीतने का मतलब है कि आप माइंड को अब कंट्रोल करने की आपके अंदर कुछ एबिलिटी है, तो आप आगे कुछ और कर सकते हो। आप में भी अगर कोई ऐसा हो जिसको लगता है कि थोड़ा माइंड ज्यादा ही पावरफुल हो गया आपसे, तो आप माइंड को कहीं ना कहीं ऐसे ही रोकिए जैसे बच्चों को रोकते हैं। तो आप बच्चों को स्ट्रिक्टली कहते नहीं देख सकते हो, टीवी नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, बस 2 घंटे से ज्यादा आपको अलाउ नहीं कर सकते। कभी कभी आप बच्चों के लिए तो बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पर खुद के लिए अगर नियम बनाया कि मैं 2 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखूंगा, कभी कभी बच्चे माँ बाप को डांटते भी हैं, बोलते भी हैं, आपने ही तो बोला था कि सब 2 घंटे देखेंगे और आप तो न्यूज में चिपके हो 4 घंटे से, ऐसे कैसे बोलते हो? हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को राइट होता है, तू पेरेंट्स बन जाएगा तू भी देख लेना 5 घंटे। तो हमारे वीकनेस को हम बच्चों पर थोप देते हैं। देवियों सज्जनों, तो ये जो डिटर्मिनेशन है, अगर वो मन को कंट्रोल करने में, सेंसेस को कंट्रोल करने में और प्राण को कंट्रोल करने में हम लगाएं और योग के द्वारा, दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ धृति, डिटर्मिनेशन, बेस्ट टाइप ऑफ फार्मनेस। और वो आपको सिर्फ रियल लाइफ में सुख नहीं देगा, डे टू डे लाइफ में, आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए भी आपको तैयार रखता है, जिसको आप कहते हैं जो स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी वो आपको हेल्प करता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन है, बोलिए मेरे साथ, यया तो धर्म का मार्थान धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ सा राजसी तीसा पार्थर। जो सेकेंड कैटेगरी की जो डिटर्मिनेशन है वो है कि कृष्ण कहते हैं वो अर्जुन, बाय हु इज द धृति, द डिटर्मिनेशन बाय हु इच वन मेंटेन्स एक्टिविटीज ऑफ माइंड एक्सेट्रा विथ द पर्पस ऑफ अटेनिंग धर्म प्लेजर एंड वेल्थ इज ऑफ द नेचर ऑफ रजस। जब आप माइंड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको कुछ पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, वो कौन से? धर्म। धर्म मतलब मेरिटस थिंग, जिससे हमें सोशियली और इंडिविजुअली थोड़ा मेरिट्स गेन हो। काम, जो हमारे डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनको पूरी करें, और अर्थ, पैसा, धन संपत्ति, इन तीनों को इकट्ठा करने में जो हम डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे धन ही कमाना है, गोल फिक्स किया कि मुझे 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में इतना कमाना है, इतने पोस्ट तक, इतना बड़ा पोस्ट तक जाना है, मुझे सीईओ बनना है कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनना है कंपनी का, पॉलिटिकली मुझे गवर्नर बनना है, या जो भी आपकी गोल है। ये जो डे टू डे लाइफ में, जो मैटेरियल लाइफ में जो हमारे गोल होते हैं, उसको अचीव करने के लिए जब हम कोई डिटरमाइंड होते हैं, बिल्कुल फार्मनेस करते हैं, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं, कोई भी मुश्किल आए मुझे नहीं सुनना। बहुत सारे बच्चे शादी नहीं करते देर तक, क्यों? क्योंकि भाई उनके स्टार्टअप शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है, अभी तो काम का टाइम है, लाइफ में टाइम नहीं है भाई शादी करने की, बच्चे पालने की। 40-45 तक शादी नहीं कर पाते हैं, आगे भी कभी कभी कोई करता भी नहीं है। ये भी डिटर्मिनेशन है कि आपने कोई गोल फिक्स किया और उसको अचीव करने के लिए आप आगे पीछे नहीं देखते हैं, दाएं बाएं। पर वो डिटर्मिनेशन सेकेंड लेवल का होता है, क्योंकि आपका गोल कोई मेटेरियल चीज को अचीव करना है। जनरली जो सेकेंड लेवल का होता है वो कॉमन इंसान इसको यूज करता है। सो ये जो वर्ल्डली माइंडेड पीपल होते हैं, जो जनरली जिसको हम आम लोग कहते हैं, आर ऑल्सो स्टंसली डिटरमाइंड इन देयर परस्यूट। हम सब कुछ ना कुछ मामले में बहुत डिटरमाइंड होते ही हैं, पर वो डिटरमाइंड इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेटेड होता है हमारा कुछ ऐसे रिजल्ट से जो हमें दिखना चाहिए। वो धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, यश हो, इवन हम बहुत अच्छे काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं और उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस भी करते हैं, पर उसके बैकग्राउंड में इंटेंशन क्या आता है कि मुझे सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने, मुझे अच्छा बोले, मुझे तारीफ करें, स्टेज में मुझे रिकॉग्नाइज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अखबारों में मेरा नाम आए, टीवी में मेरा नाम आए, वगैरह वगैरह। तो वो भी डिटर्मिनेशन ही होता है। आप उसके लिए बहुत कुछ सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम को आप साइड हटाते हैं। वो महात्मा गांधी के सारे मोस्ट ऑफ बच्चे बिगड़ गए। क्यों? वो रिवोल्ट करते थे गांधी के खिलाफ कि ये हमारा ख्याल नहीं रखते। उनकी सारी टाइम वो समाज के लिए, देश के लिए देते। इवन उनके घर में बहुत महंगे महंगे गिफ्ट आते थे, वो गिफ्ट को भी कांग्रेस को डोनेट कर देते थे, पार्टी को डोनेट कर देते थे। तो उनकी पत्नी भी ऑब्जेक्ट करती थी, ये तो मुझे लोगों ने दिया है, आप क्यों ले लेते हो? बोले तुम्हें नहीं दिया है, क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूं, इसीलिए आज मेरी पत्नी होने के नाते लोग तुम्हें देते हैं। वो तुम्हें कस्तूरीबा के नाम या मोहनदास की पत्नी के रूप में नहीं देते, वो महात्मा गांधी के रूप में, इसीलिए तुम्हारा अधिकार नहीं, ये छीन लेते थे। पर पत्नी कंप्रोमाइज कर जाती थी, बच्चे नहीं करते थे, सब बिगड़ गए। कोई तो मुसलमान बन गया, कोई शराबी बना, मोस्ट ऑफ वो बिगड़ गए। क्यों? वो बाप से बदला लेना था। तो इसका मतलब उन्होंने काफी सैक्रिफाइस किया फैमिली लाइफ में, पर क्यों किया? सोशल रिकॉग्नाइजेशन उसमें छुपा होता है। उसमें वो मन और इंद्रियों को इसीलिए नहीं किया कि जेन्युइनली नहीं किया, उसके बैकग्राउंड में कुछ था। तो महात्मा ऐसे ही थोड़े कोई बन जाता है। तो अगर हम कोई मैटेरियल गोल अचीव करने के लिए डिटरमाइंड है, दैट इज सेकेंड लेवल की धृति है। अब आते हैं थर्ड लेवल की। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। ये जो कोई भी जितने भी चीजें क्लासिफाई किया है तीन तरह से, आप इतने जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, दो चार महीने से आप सुन रहे हैं, उनमें जो थर्ड लेवल का है वो जनरली दुर्मेधा होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत खराब है। आप आम भाषा में कह सकते हैं स्टूपिड है, फुलिश है, इग्नोरेंट है। उसकी वो उसमें भी कुछ डिटर्मिनेशन होता है। वो किस टाइप का? वो अपने नींद को छोड़ने में कंप्रोमाइज करने को तैयार है, दैट इज हिज डिटर्मिनेशन। मेरे नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और क्या भय? कभी किसी तरह कोई उसके साथ खराब हो गया था, वो डर बसा हुआ है। कभी बचपन में हुआ था, 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, वो आज भी उस डर को लेकर के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करता है जहां उसका नाम भी आपको मिल जाए। हम सबको कुछ ना कुछ फेबिया होता है, किसी को पानी की है, किसी को आग की है, किसी को बहुत सारों को कॉकरोच की है, चूहे की है, सांप की तो ज्यादातर लोगों को है। ये जो भय कभी हुआ, कभी चोट लगा या कुछ डर हुआ या किसी का हमने देखा, थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाना चाहिए। पता कर लिया कॉकरोच में कुछ नहीं बचा, बेचारा वैसे ही अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल करता है, और उसको देखते ही आप पूरा काउच उठक पटक कर लेते हो। पता है तब भी ये जो स्टबर्ननेस, इसको उन्होंने डिटर्मिनेशन नहीं कहा, इन्होंने बोला ये जिद्दी है, जो डर को पालते हैं और नींद को पालते हैं और शोक को। शोक कुछ खराब हो गया अपने साथ, ये बच्चे होते हैं, मान लीजिए उनको कहीं चोट लग गया और किसी ने देखा नहीं, मां बाप ने नहीं देखा, तो वो चोट लगा उस समय जो दर्द हुआ, रोए, फिर देखा कोई नहीं देख रहा है, वो चुप हो गए, फिर घर गए, मां मिल गई, फिर वो मां को देखते ही जोर से पकड़ के फिर रोने लगते हैं। मां ने समझाया, बेटे क्या हुआ, सहलाया, जो भी है दवाई लगाया। पापा घर पर नहीं थे, 5 घंटे के बाद भी पापा आएंगे तो भी उसको पकड़ के वो रोएगा। क्या हुआ बेटे जी, दर्द, ये गिर गया, देखो कितने जोर से। भाई कब गिरा जी, सुबह गिरा था, अभी शाम हो चुका है। तो भी खैर ये बच्चे तो करते, पर बड़े भी कम नहीं होते ना, दुख को पालते हैं, हवा देकर, पानी देकर, दवाई देकर, है ना, और ये पेस्टिसाइड देख के, खाद देख करके उसको पालते हैं। 15 साल पहले कुछ गड़बड़ हुआ, 10 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 6 महीने पहले हुआ, कुछ हुआ, कुछ बहुत बड़ा चोट लगा, डेफिनेटली दुख हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप उस दुख को, अब आप रिकवर कर चुके हैं, रिकवर करते हुए बहुत साल हो चुका है, अपना कोई विलब्ड चल बसा, हमारे बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, कोई अंग खराब हो गया, ठीक है, आपको टाइम लगा, महीने लगे, साल लगे, ये एक्सेप्ट करने की, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है ये। पर अगर आप 10 साल के बाद भी उसी चीज को पकड़ के मैं अभी भी परेशान है, तो वो जो डिटर्मिनेशन है कि मेरा दुख मेरे से हटे नहीं, वो भी एक डिटर्मिनेशन है, वो भी धैर्य है, वो कोई आसान नहीं है। और विषाद, जब आप डिप्रेशन को भी पालते हैं, हम अगर डिप्रेस्ड होते हैं तो उसको, उसके पास आपके पास ऑप्शन है कैसे आप उससे बाहर जा सकते हैं। पर बहुत लोग किसी भी कारण से नोइंगली अननोइंगली डिप्रेशन को पालते हैं। ये जो डिटर्मिनेशन है कि डिप्रेशन को पालना, दुख को पालना, नींद को पालना, ये भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर ये जो धृति है, ये थर्ड लेवल की होती है। जनरली जो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं, दुर्मेधा, जिनकी बुद्धि ही बहुत खराब टाइप की हो, उस टाइप के लोग इस तरह के धृति में फंसे रहते हैं। तो सिंपल इसकी बॉटम लाइन है कि द डिटर्मिनेशन इज सीन इन द अनइंटेलेक्चुअल पीपल ऑल्सो एंड इग्नोरेंट टू, बट इट इज द ऑब्स्टिनेंसी दैट अराइजेस फ्रॉम फियर, डिस्पायर एंड प्राइड। कभी कभी हम ईगो को चैनलाइज करने के लिए हम दुख, ये डिप्रेशन, ग्रीप को लंबा खींचते हैं। आप कहेंगे ईगो के साथ इसका क्या लेन देन है, अटेंशन मिलना बना रहे, मेरी बात समझ में आती है कि जो अटेंशन बनना बना रहे। और जब आप दुखी होते हैं, कुछ लोग छोटी सी घटना के लिए सालों तक सिंपैथी ढूंढते रहते हैं। बच्चे कभी कभी करते हैं, पर वो 12-14 घंटे से ज्यादा वो टिक नहीं पाते हैं। पर बड़े लोग भी सिंपैथी पाने के लिए जब लंबा खींचते हैं, वो सिंपैथी पाना भी कहीं ना कहीं अपनी ईगो को, क्योंकि आपको वैसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, तो थोड़ा अपने दर्द, अपनी परेशानी जो 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले लोग बचपन में उनके साथ बहुत बुरा हुआ, गरीब घर के थे, प्रॉब्लम थी, जो भी था, समस्याएं हुई, मां बाप की जो भी समस्याएं थी, भगवान की कृपा से, अपने परिश्रम से आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, तरक्की किया, बहुत पैसा कमाया, सोसाइटी में नाम है, पर गाय वगाय जहां भी बैठ जाएंगे शुरू हो जाएंगे अपनी बचपन में दुखड़ा सुनाने। मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड दैट डिटर्मिनेशन बेस्ड अपन सच स्टबर्न क्लिंगिंग, इतने ज्यादा हम चिपक चुके हैं अपने दुख वगैरह के साथ, और वो इतना अनप्रोडक्टिव थॉट है जिसका कोई प्रोडक्शन तो होना नहीं है। एंड ये कहां से बना, जनरली इग्नोरेंस से बनता है। और ऐसे जो डिटर्मिनेशन है वो थर्ड कैटेगरी का है, और ऐसे भी आपके आसपास हजारों लोग मिलेंगे जो इस थर्ड कैटेगरी के डिटर्मिनेशन के साथ जीते हैं। अगला श्लोक है, इसी तरह हम सब इंसान सुख ढूंढता है, और हम जो कुछ भी करते हैं, व्हाट एवर वी डू एंड एनी ह्यूमन बीइंग व्हाट एवर ही इज डूइंग, गोल क्या है कि सुख मिले, शांति मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, लाइफ में सुकून मिले। और उस, किसका फोन बज रहा है बार बार, और उसको अचीव करने के लिए हम पूरी लाइफ काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो जो सुख हमें मिलता है या जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं बा कंटेंटेड होते हैं, उसको भी तीन तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला, सुख किस टाइप का, उसको पहले एनालाइज करते हैं। यत्तदग्रे विषम इव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम। पहला है जो फर्स्ट कैटेगरी का जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो क्या है, विच एट फर्स्ट सिम्स लाइक पॉइजन, जो जिसको पाने के लिए जो आपको करना पड़ता है, शुरू शुरू में वो जहर की तरह लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, पर उसका जो रिजल्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे, वो नेक्टर होता है, अमृत के समान आपको सुख देता है। और वो जो सुख, वो ओरिजिनेट कहां से होता है, इस बर्न ऑफ सेरेनिटी ऑफ योर माइंड और प्यूरिटी ऑफ योर, जब आपका मन प्रसन्न है, शांत है, वो शांति से जो आपको सुख मिलता है, वो फर्स्ट कैटेगरी का सुख है। आपका कोई गोल है, आपका कोई टारगेट है, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया तो आपको बड़ा अच्छा लगा, आप आज खुश हैं। आपकी बर्थडे है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स आपको विश करेंगे, अगर कर लिया तो आप खुश हैं, नहीं किया, एक आधे ने किया, थोड़ा मुरझाए मुरझाए रहे, ठीक है, वो सुख आपको मिला। आपको कुछ पैसे चाहिए, मेहनत करते हैं, पैसा मिला, आप हैप्पी हैं। पोस्ट चाहिए, पोस्ट मिलता है तो आप खुश हैं। बीमारी थी, ठीक हो गया तो आप खुश हैं। तो वो जो आपका कोई एक्सपेक्टेशन है वो पूरा हुआ, इसके कारण आप खुश हैं, आप सेलिब्रेट भी करते हैं। पर कभी आप किसी मंदिर में गए, बस गए, आपको बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला, शांति मिली, क्या एक्सपेक्टेशन था, कुछ नहीं, द सेरेनिटी ऑफ माइंड। कभी आप ऐसे स्टेज में अपने आप पहुंच जाते हैं, जरूरी नहीं मंदिर जाने पर होता हो, हमेशा भी नहीं होता ऐसा, अगर पहले से ही आप दिमाग खराब करके आए हो तब भी कहां होने वाला है, होने वाला है तो मंदिर में भी आप नेगेटिव ढूंढते रहोगे। तो जब आपका सुख विदाउट एनी रीजन है, कोई एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, कुछ आपने अचीव नहीं किया, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई मौसम भी इतना सुहावना नहीं है कि इसीलिए आप खुश हो, बस आज आप हल्का हल्का सा फील कर रहे हो, बट लाइट मूड में हो, ये क्यों हुआ? कभी कभी आम लोग भी जब किसी कारण को किसी तरह का कोई स्ट्रेस, टेंशन, कुछ काम का बर्डन ना हो तो बड़े उनका मन शांत रहता है, और उस समय की जब आप सुख एंजॉय करते हैं, वो जो सुख है वो किसी रिजल्ट को अचीव करने से नहीं हुआ, इससे मन का मन ठहर गया है, शांत हो चुका है। वो जो मन की शांति के कारण, जो प्रसाद के शब्द यूज किया, आत्म बुद्धि प्रसाद जम, मन और बुद्धि की जो प्रसादता है, जो सेरेनिटी है, जो ट्रैंक्विलिटी है, उसके कारण जो आपको सुख मिलता है, वो फर्स्ट कैटेगरी का सुख है। और ये तो विदाउट एफर्ट कभी कभी हमें अचीव कर लेते हैं। कभी आप मंदिर गए, आपको शांति सुख में अच्छा लगा। कभी आपके घर में आज कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों सुबह उठ के आप बड़ा आज अच्छा फील कर रहे हैं। तो कभी कभी ये एक्सीडेंटली आपके अंदर वो प्रसाद आ जाता है। पर अगर आप ऐसा कोई कोशिश करते हैं, कोई एफर्ट करते हैं, सुख पाने के लिए नहीं, मन को प्योर करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए। मन शुद्ध कैसे होता है? अगर आप सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं, ऑनेस्टी आती है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आता है, सरलता है? आर जब हम उसको कहते हैं तो सिंप्लिसिटी आती है। कम में आप खुश होते हैं, जितना मिला उतने में खुश होते हैं। तो अगर इसको आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में भी मोस्ट ऑफ टाइम आप खुश मिलेंगे। इवन आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, जनरली हम देखते हैं, मान लीजिए हम जब रिएक्ट करते हैं, मुझे किसी ने कुछ कहा, कुछ खराब अच्छा बिहेव किया या खराब बिहेव किया, उसकी वो जो रिएक्शन के अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने माइंड को किस तरह के ट्रेंड कर रखा है। जो बहुत ज्यादा माइंड को ट्रेंड कर रखा है इस मामले में, प्योर करने के मामले में, तो डे टू डे लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। वो कितने से बड़े पहाड़ जैसे विपत्ति में भी वो कूल एंड काम रहते हैं। उसको हम जनरल भाषा में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। यही जो एफर्ट है मन को शुद्ध रखने का, प्योर रखने का, उसी का नाम है स्पिरिचुअलिटी। आप कुछ भी करके मन को, वो कैसे रहता है कि कैसे भी अपोजिट सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में मन मेरा शांत रहे तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ टाइम आप सुख में रहते हैं। अगर ऐसा कोई एफर्ट नहीं है तो कभी कभार एक्सीडेंटली आप सुख में रहते हैं। और उस एफर्ट को हम अध्यात्म कहते हैं, उसी को हम धर्म कहते हैं। और वो फर्स्ट कैटेगरी का सुख होता है। सेकंड कैटेगरी थोड़ा सा हिंट देके नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम् राजसं स्मृतम्। ये कहता है कि जो सेकेंड लेवल का होता है, शुरू शुरू में तो मजा आता है, बाद में दुख देता है। ऐसे को आप राजस समझना, तो थोड़ा कम बैक टू सात्विक का हमने उस पर चर्चा भी नहीं की। सात्विक सुख क्या होता है? जनरली शुरू में वो बुरा लगता है। वो आंवला जानते हैं, जो ग्रूजबेरी बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, आजकल तो अवेयरनेस बहुत लोगों में बढ़ गया है। जो आंवला जब आप खाते हैं ना, वैसे तो कहते हैं अगर आप रोज एक आंवला खाओ या दो आंवला खाओ तो आपके मोस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते। आंवला जब आप खाते हैं तो शुरू में बड़ा खट्टा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा मिक्स लगता है। और बच्चे खाते नहीं आसानी से, फिर जो माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे खाएं तो फिर उसका अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और सारे बहुत सारे कैंडी बनाते हैं, तो किसी तरह आंवला खाए। पर अगर आप रेगुलर खाते हैं आपको तो बुरा लगता है, क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलता है, जो शायद आप भूल गए होंगे कि आपने कितने दिनों तक आंवला खाया था। बट इंटरेस्टिंग बात है, खरा आंवला तो वैसे भी है कि आप खा लो, कड़वा लगा जो भी लगा, थोड़ी देर के बाद वो कड़वापन अपने आप मिट जाता है, आपकी जीभ बिल्कुल मिठास से भर जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आंवला। हर वो अच्छी चीज जो आपको ज्यादा सुख दे सकता है वो शुरू में हमेशा बुरा लगता है। हार्ड वर्क सबको पसंद नहीं है, पर बिना हार्डवर्क किए कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं है। आप बच्चे पढ़ाई करते बुरा लगता है, चार चार घंटे पढ़ो, पांच घंटे पढ़ो, आपको भी लगता होगा, माँ बाप पीछे पढ़ते होंगे, ट्यूटर रखते होंगे, जो भी। तो मेहनत करके पढ़ा, रात दिन एक किया, कितने सारी सैक्रिफाइसेस किए, सुख छोड़ा, इंजीनियरिंग पढ़ी, मेडिकल साइंस पढ़ी, जो भी पढ़ी, कितना आपने त्याग किया होगा। हार्डवर्क है, कष्ट है, शुरू शुरू में जहर जैसा लगता है, पर जो रिजल्ट मिला, वैसा जब मिला जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आंखें फड़ी रह जाए, लाखों डॉलरों की आप आपकी पैकेज होता है, तो आप पहले ही दिन से एंजॉय करने लगते हैं। पर उसके लिए जो आपने त्याग किया, ये जो कष्ट सहा, वो कष्ट जहर जैसा लगता है। और हर चीज यही होता है, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता कि आप अपने लाइफ को, आप अपनी मन मर्जी लाइफ जियो और अब मैं हेल्दी रहूं, हो ही नहीं सकता। आपको तो खाना पीना कंट्रोल करना ही पड़ेगा, जीभ पर कंट्रोल लाना ही पड़ेगा, बॉडी को एक्टिव करना ही पड़ेगा, और ये दोनों बड़ा मुश्किल काम है। और जो रेगुलर करते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जो रेगुलर नहीं करते हैं, करते हैं फिर छूट जाता है या बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, उनको पूछो, मुश्किल होता है। अगर आप एक डेढ़ महीने या एक डेढ़ साल तक आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया व योगा करना छोड़ दिया, और पहली बार आप एक साल छह महीने के बाद करते हैं, तो आपके सारे बदन दर्द होने लग जाते हैं, कष्ट है। फिर आप रेगुलर करने लगते हैं, फिर आप एंजॉय करते हैं, आपकी लाइटनेस बॉडी में आता है, हल्कापन आता है, आप एंजॉय करते हैं। हर चीज में आप देखेंगे, कोई भी सुख जो शुरू में, कोई भी काम अगर शुरू में आपको मुश्किल पैदा करता है, समझ लीजिए कि इसका आखिर जो है वो सुखदायी है। और शुरू में जो अच्छा लगे, मिठाई तो सबको अच्छी लगती है, जिम में जाते ही अच्छा लगता है, पर पेट में जाने के बाद क्या करता है, तो आप ज्यादातर उस एज में आ चुके हो जो आप ज्यादा फील करते हो, मिठाई कैसे आपको करता है। पर जब आप आंवला खाते हैं, करेला खाते हैं, या सब्जियां खाते हैं, वो भी बिना तले, है ना, ये नहीं कि 250 ग्राम तेल में और पूरे मसाले तले, अगर आप हल्के मसाले में या कम तले हुए चीजों में या बिल्कुल बिना तले हुए सब्जियां खाते हैं शुरू शुरू में, हो सकता है, तो क्या करना पड़ता है, आपको टेस्ट कल्टीवेट करना पड़ता है। जो आपको दुखदायी है था, जो कष्ट है, उस कष्ट में आपको स्वाद लेना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप उसके टेस्ट कल्टीवेट करते हैं, फिर देन आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। खाली आप फिजिकली एंजॉय नहीं करते, फिर बाद में उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा, अमृत जैसा अच्छा लगने लगता है। तो वो सुख जो शुरू में खराब लगे, बाद में अच्छा मिले, तो वो सुख सात्विक है, फर्स्ट कैटेगरी का है। स्पिरिचुअलिटी में भी यही रोल अप्लाई होता है, इवन डे टू डे लाइफ में भी। आप पैसा कमाना है या नाम कमाना है, हेल्दी रहना है, कुछ भी करना है, इवन जो मैटेरियल लाइफ में भी जो सुख आप ढूंढते हैं, वो शुरू में कष्टदायक होता है। अगर वो कष्ट को आपने टॉलरेट नहीं किया, उसको अपने डाइजेस्ट करने की कोशिश नहीं की, तो आगे अमृत नहीं मिलने वाला। शुरू में अगर मीठा लगा, बाद में डायबिटीज होने की खतरा है। शुरू में अगर कड़वा लगा, हो सकता है आगे आप ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। आगे की बात आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।